आस्तिक हंसते हुए कहता है, मुझे पता है अरुणिमा, मुझे सब पता है। मैं कोई बेवकूफ थोड़ी ना हूँ कि मुझे इतना नहीं पता होगा। ये मेरे बच्चे हैं, मैं तो अपने बच्चों का नाम भी जानता हूँ। मेरे बड़े बेटे का नाम आकाश है, जो ये है, और ये जो सो रहा है ना, ये अनंत है, और तुम अरुणिमा हो। देखा अरुणिमा, मैं कितना समझदार हूँ, मुझे तो सब पता है। अरुणिमा एक गहरी सांस छोड़ती है और आस्तिक के पास आते हुए कहती है, आस्तिक, मैं तुम्हें घर ले जाने आई हूँ। आस्तिक पहले तो मुस्कुराते हुए अरुणिमा को देख रहा था, लेकिन जब उसने अरुणिमा की बात सुनी तो वो हैरान हो गया। उसने पहले तो धीरे से आकाश के हाथ से अपनी उंगली को अलग किया और फिर सीधा खड़ा हो जाता है। वो हैरानी से अरुणिमा को देखते हुए कहता है, अरुणिमा, तो मुझे कौन से घर ले जाने की बात कर रही हो? मेरा घर तो ये है ना? ये मेरा घर है, तो ये तुम्हारा घर भी है, ये हमारा घर है। तुम्हें पता, मेरे पास एक कमरा भी है और उसमें एक बेड भी है। तुम उस बेड पर सो जाना, आकाश और अनंत भी तुम्हारे साथ उस बेड पर सो जाएंगे, मैं नीचे ज़मीन पर सो जाऊंगा। अरुणिमा हैरानी से आस्तिक को देखने लगी। इसका मतलब ताई जी सही कह रही थीं, आस्तिक सब कुछ भूल गया है, उसे कुछ भी याद नहीं है। उसने पागलखाने के उस कमरे को ही अपनी दुनिया बना ली थी और वहाँ पर बनी हुई तस्वीरों को ही उसने अपना परिवार बना लिया था। अरुणिमा आस्तिक के पास आती है और कहती है, नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूँगी, ना ही मेरे बच्चे यहाँ रहेंगे। वो कमरा बहुत गंदा है, तुमने देखा नहीं वहाँ पर कितनी धूल मिट्टी है? इतनी गंदगी में अगर बच्चे रहेंगे तो वो बीमार पड़ जाएंगे। बच्चों को तो हमेशा साफ़ सुथरी जगह पर ही रखा जाता है ना, तो हम अपने बच्चों को उस गंदे से कमरे में कैसे रखेंगे? इसीलिए मैं बच्चों को अपने साथ ले जा रही हूँ और तुम भी मेरे साथ चलोगे। मैं बच्चों के साथ तुम्हारा भी ख्याल रखूँगी। आस्तिक अपना एक हाथ उठाकर अपने सर पर रखता है और अपने माथे को खुजलाते हुए कहता है, हाँ अरुणिमा, मैंने तो ये सोचा ही नहीं, बच्चे वहाँ कैसे रहेंगे? वहाँ पर तो बहुत मिट्टी आती है और कीड़े भी आते हैं, बच्चे वहाँ नहीं रह सकते। अरुणिमा, बच्चे तो अच्छी जगह पर रहेंगे और मैं भी बच्चों के साथ ही रहूँगा। आकाश ने कहा ना, उसे मेरे साथ रहना है, और अनंत जब उठेगा ना तो वो भी यही कहेगा। इसीलिए हम सब तुम्हारे घर चलेंगे, जहाँ पर मेरे बच्चों को बीमारी नहीं होगी। हाँ, वो अच्छी जगह होगी। अरुणिमा मुस्कुराते हुए आस्तिक का हाथ पकड़ती है और उसे बेंच पर बिठाते हुए कहती है, ठीक है फिर, तुम यहीं बैठो और मेरा इंतज़ार करो, मैं तब तक डॉक्टर से मिलकर आती हूँ। ये कहकर अरुणिमा दरवाजे की तरफ बढ़ जाती है, लेकिन दरवाजे के बाहर एक अस्पताल स्टाफ अरुणिमा को देखकर कहता है, अरे मैडम, आपने उस पागल के साथ बच्चों को अकेला कैसे छोड़ दिया? वो पागल बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगले ही पल अरुणिमा ने उस आदमी के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारते हुए कहा, राजा साहब हैं वो, तमीज़ से नाम लो उनका। उस अस्पताल स्टाफ का चेहरा नीचे झुक गया था और उसने अरुणिमा से कहा, माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई। अरुणिमा एक नज़र कमरे के अंदर झांक कर देखती है। आस्तिक बेंच पर बैठा हुआ था और दूर से ही हाथ हिलाते हुए बच्चों को देख रहा था। उसे देखकर अरुणिमा उस आदमी से कहती है, भले ही वो अभी सोचने समझने की हालत में नहीं है, लेकिन इतना तो मैं जानती हूँ इस इंसान को कि एक बाप के रूप में ये कभी भी अपने बच्चों को नुकसान नहीं पहुँचा सकता है। जिन बच्चों से मिलने के लिए ये दिन रात तड़पता है, उन बच्चों को चोट पहुँचाने का तो ये अपने सपने में भी नहीं सोचेगा। डॉक्टर के केबिन में पहुंचकर अरुणिमा ने डॉक्टर से आस्तिक की बीमारी के बारे में सारी डिटेल्स ली और उसे किस तरीके से ठीक की जा सकती है ये भी पूछा। डॉक्टर ने जो बताया वो सुनकर अरुणिमा को हंसी आ गई थी। डॉक्टर ने अरुणिमा से कहा कि दवाई के अलावा उन्हें कुछ थेरेपी लेनी होगी, और इसके अलावा अरुणिमा और आस्तिक के बीच जो अच्छी यादों के पल हैं वो भी आस्तिक को ठीक करने में मदद कर सकते हैं। डॉक्टर की अच्छी यादों वाली बात सुनकर अरुणिमा हंसते हुए अपने मन में कहती है, उस इंसान के साथ मेरी सिर्फ कड़वी यादें ही हैं, अच्छी यादें तो शायद हमने कभी बनाई ही नहीं है। अरुणिमा आस्तिक को वापस महल ले आई थी। अरुणिमा फिर कभी इस महल में वापस नहीं आना चाहती थी, क्योंकि यहाँ से जुड़ी दर्दनाक यादें उसे अभी भी रोने पर मजबूर करती हैं। गाड़ी से निकलकर अरुणिमा बच्चों को अपनी गोद में लेती है और दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोलकर आस्तिक बाहर निकलता है। पहले से सारा परिवार गार्डन एरिया में मौजूद था और आस्तिक के वापस आने का इंतजार कर रहा था। अरुणिमा ने अपने एक गोद में आकाश को ले रखा था और दूसरे में अनंत को, लेकिन जैसे ही आस्तिक ने उन लोगों को देखा वो एकदम से डर गया और जल्दी से अरुणिमा के पीछे जाकर छुप गया। अरुणिमा हैरानी से आस्तिक का चेहरा घूर कर देखने लगती है, तो आस्तिक धीरे से अरुणिमा को देखते हुए कहता है, अरुणिमा, यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं, तो मुझे मेले में लेकर आई हो? अरुणिमा कस के अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसके गोद में दो बच्चे हैं और उसके पीछे एक हट्टा कट्टा जवान बच्चा है, पता नहीं उसे कितने बच्चों की देखभाल करनी है। पृथ्वी जल्दी से आगे आता है और आस्तिक को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, वेलकम होम भाई, आपको वापस देखकर अच्छा लगा, आपके बिना घर बहुत सूना सूना लग रहा था। लेकिन आस्तिक ने तुरंत अरुणिमा की साड़ी को पकड़ लिया और उसके पीछे छुपते हुए उसने अरुणिमा से कहा, अरुणिमा, ये अंकल कौन है? पृथ्वी की आंखें बड़ी हो गई थीं, लेकिन अरुणिमा की हंसी छूट गई। उसने मुस्कुराते हुए आस्तिक को देखकर कहा, आस्तिक, ये आपके भाई हैं। और फिर अरुणिमा ने प्रणाली और कीर्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा, और ये दोनों आपकी बहनें हैं और वो आपकी ताई की हैं, क्या आपको ये लोग याद नहीं हैं?
सारा परिवार आस्तिक को प्यार और अपनीपन भरी नजरों से देख रहा था, लेकिन आस्तिक सबको अनजान लोगों की तरह देख रहा था। उसने धीरे से अरुणिमा के आंचल को और कसके पकड़ते हुए कहा, ये सब तो बहुत बड़े बड़े हैं, इतने बड़े बड़े मेरे भाई बहन थोड़ी ना हो सकते हैं, मैं तो बच्चा हूँ ना। ये कहते हुए आस्तिक ने अरुणिमा की साड़ी के आंचल से अपना चेहरा ढक लिया और अरुणिमा के कंधे पर सरकते हुए कहा, अरुणिमा मुझे इन सबसे डर लग रहा है, मुझे बचा लो। आस्तिक की ऐसी हालत देखकर सभी परिवार वाले दुखी हो रहे थे, यहाँ तक कि कीर्ति की आंखों से आंसू भी निकल आए थे। अरुणिमा को सच में आस्तिक के परिवार के लिए बुरा लग रहा था। जो आस्तिक अपने परिवार को अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था, आज वही आस्तिक अपने परिवार वालों को पहचानने से इनकार कर रहा है। अरुणिमा आस्तिक को लेकर महल के अंदर आती है और महल के अंदर कदम रखते ही उसका दिल उन दर्दनाक यादों से दोबारा से लड़ने लगता है। उसकी आंखों में आंसू आ गई थी क्योंकि एक बार फिर से वो सारी यादें उसके सामने आ गई थी।